الحمد لله وكفى وسلام على الذي اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا علما. तो हम मुकदमा मारुफ़ुल कुरान पढ़ रहे हैं, मारुफ़ुल कुरान की जिल्द नंबर 1 से। और इसमें जो आखिरी मौजू हमने पढ़ लिया था वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जमाए कुरान, इसकी तारीख जो है वो हमने पढ़ ली थी। एक मिनट, ये मैसेज जरा मैं ख़वातीन में भी भेज दूँ। जी, तो आखिरी बात इसमें थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कारनामे को पूरी उम्मत ने बनज़र इस्तेहसान देखा, और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस काम में उनकी तायीद और हिमायत फरमाई। सिर्फ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मामले में कुछ रंजिश रही, जिसकी तफसील का ये मौका नहीं है। और नीचे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू हमने फुट नोट में लिख दिया है कि इसकी तफसील के लिए अहकर की मुफस्सल किताब उलूमुल कुरान मुलाहिजा फरमाइए। तो उसमें हज़रत ने इसकी काफ़ी तफसील लिखी है, जो कि हमने मुख्तसरन आपको पिछली क्लास में बता भी दी थी कि उस अब्दुल्लाह बिन मसूद रतान की इस रंजिश की वजह क्या थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कोई बात उनकी भलाई के सिवा ना कहो, क्योंकि अल्लाह की कसम उन्होंने मसाहिफ के मामले में जो काम किया वो हम सब की मौजूदगी में मशवरे से किया। ठीक है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिनके ऊपर बाद में लोगों ने बहुत सारे एतराज़ किए। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के साथ ना ये वाला मामला अल्लाह तआला की तरफ से ये हुआ कि एक तो उनकी उनका जो खिलाफत का खात्मा भी जो है वो उनकी शहादत पर हुआ, और उनकी शहादत जो थी वो ऐसी नहीं थी जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की शहादत थी, कि उमर रज़ी अल्लाह को तो एक इनफरादी शख्स ने अपने इनफरादी अमल के तौर पर जा कर के शहीद कर दिया था ना, वो जो क्या नाम था उसका, एक गुलाम था वो। लेकिन इनकी जो है वो काफ़ी जो है वो यानी उस वक्त तक फितना फसाद जो है वो मदीना तैयबा के अंदर बलवाइयों ने और जो मुनाफिकीन थे उन लोगों ने मिल मिला करके जो है वो बड़ा फितना उलूलू फिरोज जी, तो उसने उमर अजान को एज एन इंडिविजुअल एक्शन यानी कहते हैं कि इस तरह आजकल भी कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, बहरहाल तो इनको जो है वो पूरा ग्रुप ने मिल करके जो है वो शहीद किया था। तो फिर जब इस तरह से फितना फसाद जो है वो क्रिएट हो गया था, तो फिर इनके बहुत सारे दूसरे कामों के ऊपर भी एतराजात किए गए थे, जिनके फिर उलमा मशाइख ने जो है बड़े मुफस्सल जवाब दिए हैं। रोग ऑपरेटर भी, हाँ ये बड़ा टेक्निकल लफ्ज आपने बता दिया, रोग ऑपरेटर के तौर पर भी इसको कहा जाता है। बहरहाल तो अब जो है वो अगला मौजू जो आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 44 के ऊपर है 44 के, तिलावत में आसानी पैदा करने के इकदामात। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़कूरा बाला कारनामे के बाद उम्मत का इस पर इजमा हो गया कि कुरान करीम को रस्म उस्मानी के खिलाफ किसी और तरीके से लिखना जायज़ नहीं। चुनाचे इसके बाद तमाम मसाहिफ इसी तरीके के मुताबिक लिखे गए, और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व ताबईन रहिमहुमुल्लाह अलैहिम ने मसाहिफ उस्मानी की नकूल तैयार कर कर के कुरान करीम की वसी पैमाने पर इशाअत की। ठीक है, तो इजमा, इजमाए सहाबा, ठीक है, जो कि उम्मत के सबसे पहले उलमाए कराम थे। ठीक है, तो उलमा का जो इजमा है ना, इसकी दागबेल कहाँ पे पड़ी है, ये सहाबा कराम से पड़ी है। ठीक है। और इसकी दलील जो है कि ये इजमा भी उम्मत के लिए हुज्जत है, इसकी दलील खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर वही क्लास से पहले जो है उसका ख्याल नहीं आया। पिछली भी एक क्लास थी जिसमें क्लास के दौरान ही ख्याल आया था, तो वो आयत जो है वो मैं लिख नहीं सका आप लोगों के लिए कि कौन सी वाली आयत से इजमा की दलील कुरान मजीद से ही हमें मिलती है। उस सबील मोमिनीन वाली जो आयत है, अगर हाफिज साहब को याद हो और यहाँ पे नकल फरमा सकते हैं, तो मोमिनीन का तरीका जो है ना, ये भी इजमा है। तो अब इसके जरिए से जो है वो किसी चीज़ का जायज़ होना या किसी चीज़ का नाजायज़ होना, इसका जो है वो शरीयत के अंदर इजमा की बुनियाद पर फैसला किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके यानी ये चीज़ पहले जो है वो जायज़ थी कि किसी भी तरीके से लिखना जो है वो जायज़ है रस्म उस्मानी के अलावा भी। ठीक है, यानी जो जो हरूफ के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ था, लेकिन अब जो है वो इन हजरात ने एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स की वजह से, जमाने के बदलते हुए हालात की वजह से, और जो नई सूरतें पेश आ रही थीं, तो उसकी वजह से फिर एक नया फतवा जारी किया जो कि उस पहले फतवे के हक में ही था, वो उसके खिलाफ नहीं था। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। कि वमन युशाक़िक़ الرَّسُولَ मिन बादी मा तबय्यन लहु الْهُدَى वयत्तबे गैर सबील المؤمنين। ठीक है ना, कि जिसने रसूल की जो है मुखालफत करी, मिन बादी मा तबय्यन लहु الْهُدَى, बाद इसके के हक का रास्ता जो है वो खुल चुका था, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बात को क्लियरफाई कर चुके थे, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करी और जिसने मोमिनीन के रास्ते से हट करके एक रास्ता इख्तियार किया, ठीक है, नुवल्ली ही, तो हम उसको उसके हाल पर ही छोड़ देंगे, उसको उसी के हवाले कर देंगे, मा तवल्ला व नुस्ली ही जहन्नम, और उसको जहन्नम के अंदर फेंक देंगे, व साअत मसीरा, जो कि बहुत ही बुरी जगह है, ठीक है ना, पलटने वाली पहुंचने वाली बहुत ही बुरी जगह है, यानी इजमा के खिलाफ, राइट, वलयत्तबे गैरा सबीलिल मुमिनीन। क्या है ये? कंसेंसस ऑफ द मोमिनीन, और मोमिनीन में से कौन? हमारे जैसे मोमिनीन जिनके पास इल्मी कोई नहीं, नहीं, इल्म वाले मोमिनीन, राइट, जिनको कि कुरान मजीद और हदीस मुबारक और सुन्नत का जो है वो इल्म है, उनके रास्ते से हट करके जिस रास्ता अख्तियार किया, तो उसके ऊपर जहन्नम की वईद है, यानी ये फर्ज के दर्जे में है ना, क्योंकि जहन्नम की वईद जिस चीज पर आ जाए तो अब उसको ना, उसको करने वाला जो है वो यानी या तो काफिर या जो है वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और जहन्नुम यानी दिस इज हाउ यू डिफाइन व्हाट फर्ज इज। ठीक है ना, तो इस वजह से इजमा जो है वो खाली है नहीं कि साहब एक दिन मिलके बैठे और उन्होंने सोचा कि चलो जी अब हम भी जो है ना वो अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाते हैं और हम अपनी तरफ से जो है वो अब नए नए फैसले करना शुरू कर देते हैं। नहीं, कुरान मजीद के अंदर खुद जो है वो अल्लाह ताला ने इसकी सराहत फरमा दी। और वैसे भी ये तो यानी नकली दलील है कि पीछे से हमें नकल होते हुए ये दलील पहुंची है, लेकिन इवन अकल से भी अगर सोचा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया का तरीका ये बनाया है कि नए हालात पेश आते हैं, नए हालात पेश आते हैं, ठीक है ना, नई नई चीजें ईजाद होती हैं, नई नई जो है वो सिचुएशंस जो है वो अकर होती हैं। ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर के गोल घूम रहा है पूरा का पूरा, है जो चीज हो गई थोड़े दिन के बाद वही चीज एग्जैक्टली दोबारा हो जाएगी, फिर थोड़े दिन के बाद वही चीज एग्जैक्टली दोबारा हो जाएगी। तो यानी जिस तरह कंप्यूटर्स में करते हैं ना वो प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको कहते हैं कि एंडलेस लूप, वही चीज रिपीट हो चले जा रही, रिपीट हो चले जा रही, रिपीट हो चले जा रही, कोई फर्क नहीं आ रहा, वही चीज रिपीट हो रही है। तो भाई अगर वही चीज रिपीट हो रही होती, हर थोड़े दिन के बाद कोई चीज पुरानी वाली रिपीट हो जाती, तो फिर नए हुक्मों की कोई जरूरत नहीं थी, इजमा की कोई जरूरत नहीं थी, कयास की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया का सिलसिला ऐसे बनाया कि नई नई सिचुएशंस पेश आएंगी, तो अब अगर नई सिचुएशंस पेश आएंगी और उसके लिए फिर अहकामात की जरूरत पड़ेगी, तो फिर कैसे? अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि वही बंद, राइट, वही बंद। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि रसूल, रसूलों का सिलसिला बंद, ये अल्लाह का ही फैसला है ना, राइट, ये साहबा ने तो ये फैसला नहीं किया था कि अब कुरान नहीं आएगा, अब रसूल कोई और नहीं आएंगे, ये साहबा ने तो फैसला नहीं किया। तो अब जब रसूल का सिलसिला बंद, कुरान बंद, तो फिर उसके बाद नई सिचुएशंस के बारे में कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर तो कोई हिदायत ही नहीं, ठीक है ना, कोई गाइडेंस ही नहीं, तो फिर तो ये दीन खत्म हो गया। अब तो इस दीन की रेलेवेंस खत्म हो गई, जैसे कि पिछले अधियान की रेलेवेंस खत्म हो गई, उसी तरीके से इस दीन की भी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी ना, एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। तो ये दीन तो आखिर वक्त तक के लिए आया है, तमाम इंसानियत के लिए आया है, राइट, कयामत तक के लिए आया है। तो फिर कयामत तक के सिचुएशंस का कैसे फैसला होगा? तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम के अंदर इजमा का रास्ता खोला, ठीक है। यही दलील किसी ऐसे इंसान के लिए कि जो कि या तो मुसलमान नहीं है और वो सारे अदियान को जो है वो समझता है कि हाँ भाई ये सारे अदियान जो है ना वो बस अल्लाह की तरफ से ही है, राइट, और किसी भी दीन को जो है वो फॉलो करके हम अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं, राइट, सारे दीन ही सही हैं, एब्राहमिक अकॉर्ड वाले, राइट, तो सारे दीन ही हक का रास्ता है, सब ही अल्लाह को राजी करने के लिए जेन्युइन रास्ते हैं। चाहे कोई गैर मुस्लिम ऐसा सोचना शुरू हो जाए या किसी मुसलमान के दिल में इस किस्म का ख्याल आ जाए, तो इसका क्या जवाब है? कैसे आप उसको कन्विंस करेंगे? कैसे आप उसको बात समझाएंगे? ठीक है ना, उसको ऐसी बात समझाएंगे कि देखो इस बात पर तुम भी मुत्तफिक हो और हम भी मुत्तफिक हैं, हमारे दरमियान मुत्तफिकुन अलैह, राइट, हमारे दरमियान कॉमन एग्रीमेंट किस बात के ऊपर है जिसे ना तुम इनकार कर सकते हो ना हम इनकार करते हैं, कि कोई दूसरा दीन महफूज नहीं है, कोई दूसरा दीन महफूज नहीं है, ना उसकी किताब महफूज है, ना उसके रसूल की जो है वो जिंदगी महफूज है, और हमारा दीन, दीन इस्लाम जो है, ये इसकी किताब भी महफूज है, जैसे नाजिल हुई थी वैसे ही हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, चाहे वो सिर्फ रस्म उस्मानी वाली वर्जन महफूज हो हमारे पास, या यानी हर 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 इंसान के पास महफूज है ना वो, हर हर इंसान के घर के अंदर ये मसहफ महफूज है, जो कि उस्मान रतान के ज़माने में जमा हुआ, और अबू बकर सिद्दीक रतान के ज़माने में जमा हुआ, और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जमा हुआ, वो हमारे घर में मौजूद है, ठीक है ना। बल्कि सिर्फ ये नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक का एक एक गोशा महफूज है। तो हमें हिदायत जो है वो उससे भी मिलती हैं, और इजमा का रास्ता भी इस दीन के अंदर ओपन है, जबकि किसी दूसरे दीन के अंदर ये है ही नहीं। जब है ही नहीं महफूज, हिदायत के मरकज और हिदायत के मंबा महफूज ही नहीं है, तो फिर ये लोगों को कैसे हिदायत दे सकता है कि किस वक्त क्या करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, अल्लाह ताला क्या चाहता है इंसान से, क्या नहीं चाहता है इंसान से, कैसे पता करेंगे? तो ना तो हिंदुइज्म के पास ऐसी कोई चीज है, ना जुडेज्म के पास ऐसी कोई चीज है, ना क्रिश्चियनिटी के पास ऐसी कोई चीज है, राइट, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है, ठीक है ना। तो आज के दौर में जो बहुत सारे मुसलमान अपने दीन के बारे में शक में मुब्तला हो रहे हैं और दूसरे अदियान के बारे में खुश गुमानियों में मुब्तला हो रहे हैं, खुश गुमानियों में मुब्तला हो रहे हैं, वो किस बुनियाद पर है? उनकी ला इल्मी की बुनियाद पर है, उनकी नासमझी की बुनियाद पर है, उनको ये बात पता ही नहीं, वो इतनी इस लेवल के ऊपर जाके सोच ही नहीं रहे कि भाई दीन आया किस लिए है। दीन रहनुमाई के लिए आया, हिदायत के लिए आया, और जब रहनुमाई मौजूद ही ना हो तो फिर वो किस किस काम का, राइट, दीन रिवायात के लिए तो नहीं आया कि हाँ भाई तुम जाकर के जो है ना वो ऐसे हाथ जोड़ करके किसी मूर्ति के सामने पूजा कर लेना, तुम जो है वो किसी जीसस के बुत के सामने जाकर के तुम खड़े हो जाना, और तुम जो है वो इस तरह से नील डाउन कर लेना, तुम इस तरीके से जो है वो अपनी दाढ़ी उगा लेना, तुम इस तरीके से जो है वो अपना लिबास पहन लेना, बस इसलिए आया दीन, राइट, दीन तो गाइडलाइंस के देने के लिए आया ना, तो गाइडलाइंस उसी वक्त मिलेंगे ना जब वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बुनियादी चीज है। हमारे हजरत ने बल्कि बहुत पुरानी अपना एक वाकया बयान करते हुए बताया था कि उनको इस तरह से बैनुल यानी ये जो इंटरफेथ जो गैदरिंग्स होती है ना अमेरिका वगैरह के अंदर, जिसमें हर फेथ के जो है वो लोग आते हैं और अपने फेथ को जो है प्रेजेंट करते हैं, एक दफा हजरत को भी बुलाया गया था, क्योंकि वही थे जिनको अंग्रेजी आती थी और किसी जो उलमा थे वहां पे उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो हजरत को उलमा ने भेजा कि आप वहां पर जाइए और वहां पे दीन इस्लाम को प्रेजेंट कीजिए। तो हजरत ने वहां पे जाकर के क्या बात करी थी, एग्जैक्टली यही बात करी थी कि सब अपने अपने जो इल्हामी जो उनकी आसमानी किताब है उसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर सब अपनी अपनी आसमानी किताब को पढ़ेंगे, राइट, तो जब नेक्स्ट मीटिंग का वक्त आया तो आसमानी किताब पढ़नी शुरू करी, जीसस वो क्रिश्चियन ने पढ़नी शुरू करी, तो हजरत ने कहा मैं आसमानी किताब की बात हुई थी, हमने एग्री किया था कि हम आसमानी किताब को पढ़ेंगे, आप तो अंग्रेजी के अंदर जो चीज पढ़ रहे हैं तो ये तो आसमानी किताब नहीं है, आप खुद कहते हैं कि आपकी जो आसमानी किताब थी वो अंग्रेजी के अंदर को थोड़ी नाजिल हुई थी, राइट, वो तो हिब्रू में नाजिल हुई थी, वो तो जो है वो आर्मेक लैंग्वेज के अंदर नाजिल हुई थी, आप कौन सी वाली किताब पढ़ रहे हैं। वो फौरन बात समझ गया है, बल्कि यहूदी जो था ना वो फौरन बात समझ गया और उसने कहा कि मिस्टर जुल्फिकार यू आर राइट, यू आर द ओनली वन हु स्टिल हैज द बुक एग्जैक्टली इंटैक्ट, नन ऑफ अस हैव देयर बुक्स एग्जैक्टली इंटैक्ट, नन ऑफ अस हैव देयर बुक्स एग्जैक्टली इंटैक्ट, राइट, यही तो बुनियाद है, यही तो बुनियाद है, ठीक है ना, कि हमारे पास अल्लाह की रहनुमाई मौजूद है सही और गलत की, अवामिर और नवाही की। अब हम अवामिर और नवाही को उठा करके साइड पे कर दें और रिवायात को उठा करके जो है वो अपना दीन समझना शुरू कर दें, तो फिर हम में और दूसरों में फर्क क्या है, राइट, हम में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा, वो भी रिवायात को फॉलो करते हैं, हम भी रिवायात को फॉलो करते हैं, अपने बाप दादा को करते हुए देखा, आपने मम्मा चाचा को करते हुए देखा, बस वही करना शुरू हो गए। अवामिर और नवाही, कमांड्स एंड डूज एंड डोंट्स, ये किधर गए, ये तो हिदायत थी ना, असल दीन तो यही था, बात समझ में आ रही है जी। क्या लिखा आपने, व्हाट इफ द सेकंड पर्सन क्लेम्स दैट द अदर रिलीजन आर आल्सो डिक्टेटेड करेक्टली, इट इज वेरी इजी टू प्रूव देम रॉन्ग, नो प्रॉब्लम टू प्रूव देम रॉन्ग, इम्पेरिकल एविडेंस के जरिए से आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि अदर रिलीजन आर नॉट डिक्टेटेड करेक्ट, ठीक है ना, एंड इट्स नॉट अस हु आर सेइंग इट, इट्स देम दे आर सेइंग, ठीक है ना, उनके अपने सोर्सेज जो है ना वो इस बात से एग्री करते हैं, जैसे अभी आपको वाक्य सुनाया ना हजरत जी का, राइट, वो खुद इस बात को जानते हैं और मानते हैं इस बात को कि हमारे रिलीजन जो है वो प्रिजर्व नहीं है, ठीक है ना, दे डोंट इवन हैव सम रिलीजियस थिंग्स टू स्टडी लाइक वी यूज टू गो टू मदारिस इन दीज क्लासेस, नहीं, दे हैव इट, दे हैव देयर मदारिस एंड दे हैव देयर क्लासेस एंड ऑल दैट, लेकिन देयर सोर्सेज आर नॉट प्रिजर्व, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक तो हाँ, तो ये जमा हो गया, और फिर सहाबा व ताबईन ने मसाहिफ उस्मानी की नकूल तैयार कर करके कुरान करीम की वसी पैमाने पर इशाअत की। अच्छा, लेकिन अभी तक कुरान करीम के नुस्खे चूंकि नुक्तों और जेर जबर पेश से खाली थे, इसलिए अहले अजम को उनकी तिलावत में दुश्वारी होती थी। अजम कौन होते थे? अजमी, जो अरबी नहीं होते थे। अजमी लफ्ज का मतलब क्या होता है? गूंगे, राइट, गूंगे, यानी जिनको बात ही करनी नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि अरब जो थे ना वो उनको अजम बोलते थे, वो खुद अपने आप को अजम को थोड़ी बोलते थे, अरब उनको अजम बोलते थे, गैर अरब लोग, क्यों बोलते थे, क्योंकि उनकी जुबान में फसाहत व बलागत की रत्ती भी नहीं थी, राइट, गोया के रत्ती भी नहीं थी उनकी जुबान के अंदर फसाहत और बलागत की, जो कि अरबी जुबान के अंदर थी, राइट, अपना मतमाए नजर बयान करना और इतना बेहतरीन तरीके से बयान करना और इतने आपके पास जो है वो चॉइस ऑफ वर्ड्स और चॉइस ऑफ यानी मैनर्स, जिस तरह से आप किसी बात को कर सकते हैं, वो सिर्फ अरबों के पास थी, तो अरबों को इस बात पे बड़ा नाज था, राइट, और वो दूसरों को फिर गूंगा कहा करते थे अपनी जुबान के अंदर, अजमी, ठीक है, तो अजमी लोग जो थे वो फिर अरबी के कैसे उस लेवल तक पहुंचेंगे, तो उनके लिए तो मुश्किल थी ना ये, तो अहले अजम को उनकी तिलावत में दुश्वारी होती थी, चुनाचे जब इस्लाम अजमी ममालिक में और ज्यादा फैला तो इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इसमें नुक्तों और हरकात का इजाफा किया जाए ताकि तमाम लोग आसानी से इसकी तिलावत कर सकें, इस मकसद के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए जिनकी मुख्तसर तारीख दर्ज ज़ेल है, ठीक है, तो नुक्ते जैसे कि पहले भी एक बात हो चुकी है, ये पहले ही ईजाद हो चुके थे, ठीक है ना, ये कोई नई चीज नहीं थी, ये बहुत पहले जो है वो, यानी बहुत सारी इसकी तफसीलात दी गई, किसने ईजाद की, इसने ईजाद की, उसने, यानी जमाने जाहिलियत में बहुत पहले नुक्तों का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये देखें, जुबान एक्चुअली रिटन फॉर्म में होती नहीं थी, जुबान क्या है, जुबान तो लोगों के आपस में कम्युनिकेशन के, ये तो साउंड्स है ना, ये साउंड्स हैं, ये सिर्फ आवाजें हैं, जो कि फिर एक लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है, आपके सामने चाइनीज आ जाए, चिंग पोंग करना शुरू करते हैं, राइट, तो आपके लिए उसकी क्या हैसियत है? सिर्फ आवाजें, राइट, वो पिंग पोंग टाइप की आवाजें निकाल रहे हैं, आप जो है वो सुन रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप जो है वो उनके सामने उर्दू बोलना शुरू कर दें, तो वो भी उनके नजदीक जो है वो आवाजों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती, ठीक है ना। तो लैंग्वेज तो आवाजें हैं, अब वो स्टैंडर्ड्स जो है वो लोगों ने आपस में सेट कर लिए हैं कि भाई इस वाली आवाज का मतलब जो है ना वो मैं ये समझूंगा कि वो मुझसे जो है वो पानी मांग रहा है, इस वाली आवाज का मतलब ये समझूंगा कि वो मुझसे खाना मांग रहा है, इस वाली आवाज का मतलब ये समझूंगा कि मुझे डांट रहा है, राइट, या मुझसे जो है वो खुश है। तो वो तो फिर कन्वेंशंस हो गए ना लोगों की आपस में, ठीक है। तो लैंग्वेज लिखी नहीं जाती थी, लिखने का जो है ना ये तो बाद में शुरू हुआ है कि फिर अब बगैर, जब जहां तक आप आवाज नहीं पहुंचा सकते, अब वहां पे अपना पैगाम कैसे पहुंचाएं, तो वो फिर लिखी सूरत में पहुंचाएं। तो उसके लिए फिर लोगों ने फिर यानी शक्लें जो है वो डिवाइस करी कि भाई इस शक्ल का मतलब जो है वो ये आवाज है, इस शक्ल का मतलब ये आवाज है, ठीक है। तो अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना फिर लिखने के का फन जो है वो डिवेलप हुआ है, ठीक है ना। कौन से वाले आवाज के लिए कौन सा वाला हर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, इसको फिर हुरूफ तहज्जी का नाम दिया जाता है, अल्फाबेट्स का, ठीक है, और फिर वॉवल्स का कि भाई इस आ का साउंड जो है वो इस वॉवल साउंड इस वॉवल सिंबल से किया जाएगा, ऊ का साउंड इस वॉवल सिंबल से किया जाएगा, ई का साउंड जो है वो इस वाले सिंबल से किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नुक्ते भी जो है ना वो बाद में जाकर के फिर डिवाइस किए गए, फिर यहाँ पर जो है वो ऊ का साउंड जो है वो बगैर नुक्ते के होगा और न का साउंड जो है वो नुक्ते के साथ होगा, राइट, ता का साउंड जो है वो ऊपर के दो नुक्तों के साथ होगा, बा का साउंड जो है वो नीचे के एक नुक्ते के साथ होगा। तो ये चीज फिर बाद में डिवेलप हो चुकी थी। कुरान मजीद के ऊपर लगाए गए जो हैं ये फिर जरूरतन लगाए गए हैं, वरना अरबी जुबान के अंदर नुक्तों का लिखना मायूब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था, ठीक है ना। अरब लोग जो है ना वो ज्यादा नुक्तों वाली जो इबारत है ना उसको यानी एक ऑफेंस समझते थे कि आप किसी को कोई काम, आप कोई किसी को कोई इबारत लिख के दे रहे हैं और उसके ऊपर आपने बहुत सारे नुक्ते लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे को जाहिल समझते हैं, राइट, कि वो पढ़ नहीं सकेगा तो मैं नुक्ते लगा के भेजूंगा। मिसाल के तौर पर हम लोग, राइट, हम जो है वो किसी गैर आलिम को, बल्कि जिस आलिम की अच्छी अरबी ना हो, तो हम अगर उसको बगैर नुक्तों के और बगैर जेर जबर, बल्कि हम तो जेर जबर पेश की बात करते हैं, हम बगैर जेर जबर पेश के अगर कोई अरबी की इबारत लिख दें तो हम फिर यही समझ, यार पता नहीं वो पढ़ भी सकेगा कि नहीं, वो पता नहीं क्या का क्या पढ़ लेगा। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि जितने आराब हरकतें लगा सके ना उतनी लगा करके भेजें, क्यों, इसलिए कि वो बंदा बेचारा पढ़ नहीं सकेगा, उसके पास इल्म नहीं है, वो सही जो है ना वो तलफ्फुज़ नहीं कर सकेगा अल्फाज का, ठीक है। तो ये तो हम जैसे लोग, हम तो अजमी लोग हैं ना, अरबी लोग जो है वो इसको अपनी तौहीन समझते थे कि इसने मुझे नुक्ते लगा लगा करके जो है वो इबारत दी, क्या मैं बगैर नुक्ते के नहीं पढ़ सकता इबारत, राइट, तो तौहीन समझते थे। तो इस वजह से जो है ना वो नुक्ते लगाना ये था ही नहीं उनके नजदीक इसकी, है ना, कि तो भाई अगला बंदा ऑफेंडेड फील ना करना शुरू हो जाए कहीं, ठीक है। तो इस वजह से नुक्ते जो है ये लोग लगाते ही नहीं थे अपनी इबारत के अंदर ना। बहरहाल तो नुक्तों की और हरकात की जरूरत अजमी इलाकों के अंदर दीन के फैलने की वजह से फिर पेश आई, तो ये भी फिर एक बिदअत हुई, यानी एक इजाफा हुआ, लेकिन ये इजाफा कौन सा वाला इजाफा हुआ, फिद दीन इजाफा नहीं हुआ बल्कि लिद दीन इजाफा हुआ, ठीक है ना, इजाफा बिदअत लिद दीन, दीन की हिफाजत के लिए दीन के किसी काम के अंदर जो है वो कोई चीज का ऐड करना, ठीक है ना, साथ ऐड करना, तो ये दीन के अहकाम के अंदर इजाफा नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि कोई चीज जो है वो अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं करी थी, अब आपने उसको फर्ज कहना शुरू कर दिया, राइट, बगैर इजमा के किसी चीज को जो है वो आपने नाजायज कहना शुरू कर दिया बगैर इजमा के, है ना। इजमा के साथ तो फिर नाजायज करार देना ये कुरान मजीद से साबित है, लेकिन ऐसे ही जो है वो आपने किसी किसी चीज को जो है वो नाजायज कह दिया, किसी चीज को जायज कह दिया, किसी चीज को जो है वो सुन्नत कह दिया जो कि सुन्नत नहीं थी, आपने अपनी तरफ से कहा से उसको सुन्नत बना दिया, ठीक है। तो वो होता है इजाफा फिद दीन, दीन के अंदर इजाफा। लेकिन इजाफा लिद दीन का मतलब होता है कि दीन के अंदर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। क्या मतलब? अहकाम में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, ना कोई कमी की जा रही है, बल्कि अहकाम पर अमल करने के लिए लोगों की आसानी की खातिर जो है वो, और मकसद क्या है, अहकाम पे अमल करें। ये नहीं है कि आसानी का मतलब ये नहीं है कि अहकाम कम कर दें तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा, है ना। आज जो है वो फतवा देने की, जी अब से जो है ना वो, चूंकि हम रात को देर से सोते हैं और जो है वो लाइट का जमाना है, अब जो है वो हर तरफ रोशनी रोशनी है, तो अब तो हमें नींद ही नहीं आती रात को, तो अब फजर जो है ना वो खत्म कर देते हैं, अब फजर, राइट। अब से जो है ना नाउज बिल्ला फजर खत्म, क्योंकि लोग जो है वो देर से सोते हैं, सुबह को उठना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो ये दीन में आसानी हो गई, माशाल्लाह, क्या जबरदस्त, नाउज बिल्ला, है क्या बात है कि ये फजर ही खत्म हो गई दीन से, दीन में आसानी हो गई। नहीं, दीन में आसानी ऐसे नहीं कर सकते, दीन को बदल नहीं सकते आसानी पैदा करने के लिए, ठीक है ना। अब फजर पे उठना है, फजर फर्ज है, तो भाई आप अलार्म क्लॉक इस्तेमाल करें, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, नहीं सो सकते तो एक अलार्म क्लॉक, नहीं तो दो अलार्म क्लॉक, नहीं तो चार अलार्म क्लॉक लगाएं, राइट। बल्कि फोन इस्तेमाल करें, कि दोस्तों से कहें कि भाई मुझे फोन करके जगा देना फजर के लिए, राइट। फोन भी तो मॉडर्न एडवांसमेंट है ना, ठीक है, तो फोन इस्तेमाल करें उसके लिए, ठीक है। तो ये कहलाएगा अलार्म क्लॉक्स और टेलीफोनिक सिस्टम, ये लिद दीन कहलाएगा, ये फिद दीन नहीं कहलाएगा। फिद दीन वो उस वक्त बनता जब आप कहें कि जी फजर जो है ना वो अब से फर्ज नहीं है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं है, ये फिद दीन कहलाएगा। या ये कि चार रिकत पढ़ने में ज्यादा मुश्किल लगती है तो अब जो है ना वो फजर जो है वो एक रिकत पढ़ लिया करो, ठीक है। तो ये इजाफा फिद दीन कहलाएगा, इजाफा लिद दीन, ठीक है। अच्छा एडिंग द जबर ऑफ द पेश वॉज लिद दीन एंड एडिंग द लेटर्स इन कुरान
उसके इतने आदी थे कि उन्हें बगैर नुक्तों की तहरीर पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी, और सियाक व सबाक की मदद से मुश्तबा हरूफ में इम्तियाज भी बआसानी हो जाता था, ठीक है। यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से जो है वो उनको समझ में आ जाता था कि अगर यहाँ पे ये वाला लफ्ज है यहाँ पे या फिर दूसरा वाला लफ्ज है। तो दोनों चीजें, एक तो उनको बगैर नुक्ते के ही इबारत पढ़ने की आदत थी, और सियाक व सबाक उनको समझ में आ रहा होता था, उनकी अपनी जुबान अरबी होती थी, ठीक है। खास तौर से कुरान करीम के मामले में किसी इश्तेबा का इम्कान इसलिए नहीं था कि उसकी हिफाजत का मदार किताबत पर नहीं बल्कि हाफिजों पर था, ठीक है। लोगों के सीनों में कुरान मौजूद था, तो असल रिलायंस तो जो है वो हाफिजे पर थी। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नुस्खे आलम इस्लाम के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे थे, उनके साथ कारी भी भेजे थे जो उसे पढ़ना सिखा सकें, ठीक है। देखें, उस्ताद वाला मामला जो है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल फरमाया कि अपनी जो भी किताब नाजिल फरमाई तो वो रसूल के साथ ही नाजिल फरमाई, कोई ऐसी किताब नहीं आई जो कि पढ़ाने वाला रसूल को लेकर के ना आया हो, ठीक है। तो उसी सुन्नतुल्लाह को फॉलो करते हुए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सिर्फ नुस्खे बना बना करके नहीं भेज दिए, बल्कि साथ साथ पढ़ाने वाले उस्ताद भी भेजे। तो इसमें रिवायात मुख्तलिफ हैं कि कुरान करीम की قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے کس نے نقطے ڈالے؟ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت ابو الاسود دوری رحمتہ اللہ علیہ نے انجام دیا، اور بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین کے تحت کیا، اور بعض نے کہا ہے کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کرایا. ٹھیک ہے، تو زیاد بن ابی سفیان کوفہ کا گورنر، یعنی یزید بن معاویہ یا ابو سفیان، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب، یا جو ہے وہ دوسرے ابو سفیان کو، یہ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، نہیں دیکھ سکا اس کو. تو خیر بہرحال، تو کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے کام کروایا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ، یحییٰ بن عمر اور نصر بن عاصم لیثی کے ذریعے انجام دیا. ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف نے خود نہیں لگائے بلکہ ان لوگوں نے لگائے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں حجاج بن یوسف. بھائی آپ کے سامنے کتاب ہے تو آپ کتاب میں دیکھ لیں، ہم کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور آپ سے سوال پوچھا تو نہیں تھا. اینی وے، واٹ اباؤٹ لیٹرز لائک تا نون اینڈ شین ایٹ دیٹ ٹائم؟ تو سیاق و سباق سے اور حافظے سے، سیاق و سباق سے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں اردو میں جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو آپ زیر زبر پیش لگا کے لکھتے ہیں. اردو بھی تو عربی کی طرح سے ہے نا، عربی کے ہی رسم الخط ہے اردو کے اندر، رائٹ؟ الحمدللہ، ورنہ کوشش تو بڑی ہو رہی ہے کہ عربی رسم الخط اردو سے بھی ختم کر دیا جائے اور رومن میں سب لکھیں. جیسے کہ واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ کتنے سارے لوگ ہیں اردو میں نہیں لکھتے، جی ہمیں اردو ٹائپنگ نہیں آتی اور ہماری اردو ٹائپنگ بہت سلو ہے اور ہم اردو لکھنی نہیں آتی، ہم تو انگلو ہیں، ہم تو جو بھی ہیں. تو اب تو وہ رومن کے اندر یعنی انگریزی کے لیٹرز کے اندر اردو لکھنے کا رواج، رائٹ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ کچھ لوگ ہیں اور خصوصاً مدارس اور علماء کرام کا اس کے اندر بہت بنیادی رول ہے کہ اردو جو ہے نا وہ ابھی تک الحمدللہ زندہ ہے، ورنہ تو مار پیٹ کر کے اس کا خاتمہ ہی کر چکے ہوتے، جس طرح سے ٹرکش زبان کا خاتمہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یو ہیو اردو فیچر ان کی بورڈ، ٹھیک ہے نا، آپ تلاش کریں، سیکھیں اس کو. اردو فیچر ہر کی بورڈ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اردو کے اندر جو ہے وہ زیر زبر پیش ہم نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ ہم اردو کے الفاظ کو سیاق و سباق سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس لکھا جا رہا ہے کہ اس لکھا جا رہا ہے کہ اس لکھا جا رہا ہے، آس لکھا جا رہا ہے نا، الف اور سین یہ دو حروف ہے نا، تو ان دو حروف کو جو ہے وہ آپ آس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن جو اردو سمجھنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو جہاں پر خاص اس متعلق تو وہ اس ہی پڑھتا ہے، وہ اس نہیں پڑھتا اور نہ آس پڑھتا ہے اس کو. کیوں؟ رائٹ بھائی، سیاق و سباق کی وجہ سے نا، اردو جانتا ہے اس وجہ سے نا. تو بالکل اسی طریقے سے عرب لوگ بھی ہم جیسے بلکہ ہم سے زیادہ بہتر ہی ہوتے تھے اپنی زبان کے اندر. ٹھیک ہے، آج بھی دیکھیں عربی جو ہے نا وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی بھی عربی زبان جو ہے نا وہ نکال نہیں پائے ہیں، ورنہ باقی سب کچھ نکالنے کے لیے درپے ہیں، عربی زبان نہیں نکال پائے، ابھی بھی اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، حرکات، تو یہ تو ہو گئے نقطوں کے بارے میں. اب اس کے بعد حرکات، تو نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات زیر زبر پیش بھی نہیں تھی، اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائی. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دولی رحمتہ اللہ علیہ نے انجام دیا، جیسے کہ نقطوں کے بارے میں بعض حضرات کا یہی کہنا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کام بھی حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن عمر اور نصر بن عاصم لیثی رحمتہ اللہ علیہم سے کروایا. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دوری رحمتہ اللہ علیہ نے وضع کی، لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل رائج ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ اور زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ اور تنوین کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی دو زبر، دو پیش اور دو زیر جس کو تنوین کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے دو نقطے اوپر والے یا دو نقطے نیچے والے یا دو نقطے آگے والے. تو ان، ان، ان یہ دو نقطوں سے مقرر کیے گئے. ٹھیک ہے نا، تو نقطے جو ہیں نا وہ اصل حرف کے نقطے جو ہیں وہ अभी भी नहीं डाले गए, बल्कि तनवीन के लिए नुक्ता इस्तेमाल किए गए। ठीक है, नुक्ते खत्ता के, यानी वो तो अरबों के लिए एक काबिले तौहीन चीज थी ना, कि नुक्ते डाल करके भेजा, नुक्ते ला डाल करके लिखा। इवन नुक्तों का होना बाद में भी एक बुरी चीज समझी जाती थी, और नुक्तों के बगैर कोई काम कर लेना ये ज्यादा अच्छी बात समझी जाती थी। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अकबर बादशाह के दरबार में दरबारी मुल्ला थे, ठीक है ना, दो भाई जो थे, क्या नाम था उनका, अभी नाम याद नहीं आ रहा, फैज और फैजी, राइट। ये दरबारी मुल्ला थे और यानी गलत फतवे देते थे बादशाह को खुश करने की खातिर। तो उनका इल्म इतना ज्यादा था और इतना उनको उबूर था अरबी जुबान के ऊपर कि उन्होंने बेनुक्ता तफसीर लिखी, पूरी तफसीर कुरान लिख दी, लेकिन एक नुक्ता भी उसके अंदर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और उस तफसीर का नाम भी क्या था, नाम भी कुछ ऐसे ही हजरत ने बताया था कि उसका नाम भी जो था ना, वो भी जाहिर पूरी तफसीर बगैर नुक्ते की थी, तो वो इल्हाम या कुछ इस किस्म के उसका कोई नाम था, तो बगैर नुक्ते के, ठीक है। तो नुक्ता होना जो है ना, ये एक तरह से एक यानी बुराई चीज समझी जाती है। तो बहरहाल तो तनवीनात भी फिर इस तरीके से मुकर्रर की गई। दैट्स वाई कलमा शरीफ डोंट हैव डॉट्स। हाँ, ये भी कलमा शरीफ की जो है ना, वो एक असरार और रमूज में से एक ये बयान किया जाता है कि देखिए अल्लाह ताला ने कलमे के अंदर नुक्ता नहीं रखा, ना अपने नाम में नुक्ता रखा, ना अपने हबीब अलैहिस्सलाम के नाम में नुक्ता रखा। मुहम्मद कोई नुक्ता नहीं है, ठीक है ना, और अल्लाह कोई नुक्ता नहीं है। अच्छा, बाद में खलील बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हमजा और तशदीद की अलामतें वजा की, कोइन करी बाकायदा, वजा यानी बनाई, गोया के पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमजा और तशदीद की अलामतें। इसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने यहया बिन युअम्मर, नसर बिन आसिम लैसी और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहिम से बैक वक्त कुरान करीम पर नुक्ते और हरकात दोनों लगाने की फरमाइश की। इस मौके पर हरकात के इजहार के लिए नुक्तों के बजाय जेर जबर पेश की मौजूदा सूरतें मुकर्रर की गईं, ताकि हरूफ के जाती नुक्तों से उनका इल्तिबास पेश ना आए। अल्लाह सुबहानहू व तआला आलम। ठीक है, तो हज्जाज बिन यूसुफ का नाम जो है वो कितनी दफा आ रहा है, कितने बड़े बड़े कारनामों के लिए आ रहा है। हालांकि इस बात पर भी उलमाए कराम मुत्तफिक हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो बहुत बड़ा जालिम इंसान था, है ना, और उसने बहुत यानी सहाबे कराम को भी कुछ को शहीद किया, और ताबईन में भी बड़ी तादाद को शहीद किया, और जो है वो तबा ताबईन के अंदर भी, और यानी बड़ा यानी कोई अच्छे अल्फाज में उसका तस्करा नहीं आता, ठीक है ना। तो अब ऐसा शख्स है, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे वाकयात भी हैं कि वो हज्जाज के दरबार में जा करके उसको जो है वो खूब सुनाते भी थे, और यानी उसको हक और बातिल जो है ना वो खुल करके उसके सामने बयान करते थे, ठीक है ना। और हज्जाज जो है ना, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो कुछ नहीं कहता, ठीक है, और उसमें अहम बात यह है कि उसकी इन तमाम वजी स्टिल मुस्लिम या सी वो मुस्लिम, ठीक है, बल्कि उसकी तौबा का वाकया जो है ना, उसकी जो उसके उसके मौत का जो वाकया उन्होंने लिखा है, इंसानियत मौत के दरवाजे पर, ये किताब है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नहीं वो कौन थे जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे पहले, जो आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, राइट, तो उनकी किताब है। तो उसमें जो है ना, उन्होंने बहुत सारे बड़ी बड़ी शख्सियात के मौत के हालात लिखे हैं, उसके अंदर जो है ना वो ये हसन बस ये हज्जाज बिन यूसुफ के मौत के हालात लिखे हैं, ठीक है ना, कि उसको ऐसी शदीद किस्म की बीमारी हो गई थी, ऐसी उसको तकलीफ होती थी, अजियत होती थी उसको, लेकिन आखिरी वक्त में जो है ना वो उसने अल्लाह ताला के सामने ऐसी इल्तिजा करी थी और ऐसी दुआ मांगी थी कि जब वो दुआ जो है ना उसकी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बयान की गई थी ना उनके सामने, तो उन्होंने भी कहा था कि अब शायद उसकी मगफिरत हो जाए, शायद उसकी मगफिरत हो जाए, ऐसे उसने अल्लाह ताला से बात करी थी आखिर वक्त में, ठीक है। तो ये भी है, इन्नल्लाह يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کا تو فاجر اور فاسق کسی بھی انسان سے کام لے سکتا ہے اپنے دین کی مدد کا. ٹھیک ہے، تو میں کہنا اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کا سب سے افضل التابعی ہونا بھی ثابت ہے، اور حجاج بن یوسف کا جو ہے وہ ظالم جابر ہونا بھی ثابت ہے. لیکن دیکھیں، حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے تحت رہ کر کے جو اچھے کام ہیں وہ کر رہے ہیں، رائٹ؟ وہ واک آؤٹ نہیں کر رہے کہ نہیں میں تو تیری اچھی بات بھی نہیں سنوں گا، تو اتنا ظالم ہے، جابر ہے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. اب جو ہے نا وہ اگر تم مجھے قرآن مجید میں حرکات لگانے کے لیے کہو گے جس سے کہ دین کا فائدہ ہے، اسلام کا فائدہ ہے، میں وہ بھی نہیں کروں گا. نہیں، ایسے نہیں کیا حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو مملکت ہوتی ہے نا، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے نا، تو اب اس کے اندر فساد، اچھا وہ بھی بات بڑی مشہور قول ہے، مختلف ذرائع سے آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے حجاج کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کرنے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمارے حق میں فتویٰ دے دیں، ہم مل کر کے اس کے خلاف بغاوت کریں گے. ٹھیک ہے نا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، منع کر دیا فتویٰ دینے، میں نہیں دوں گا تمہارے حق، تمہارے حق میں فتویٰ. ٹھیک ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تمہارے اوپر سے ٹالیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک الگ مزاج ہوتا ہے، یہ ایک الگ سوچ ہوتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی بہت سارے تحریکیوں اور تنظیموں کے دماغ سے جو ہوتی ہے نا وہ غائب ہوتی ہے، یہ والی سوچ. ٹھیک ہے نا، اپنی کسی غلطی کے اوپر دیکھنا نہیں ہے، بس دوسرے کو الزام دیتے رہنا ہے خالی. اور خصوصاً حکومت جو ہے وہ سب سے آسان ہے، حکومت کو الزام دینا. ٹھیک ہے، اپنی بھی حرکتوں سے دیکھو نا کم از کم. بہرحال تو انہوں نے نیک کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کے ساتھ مل کر کے کام کیے. ٹھیک ہے، دس واز، آپ تو رہنے ہی دینا یار. اور ہمارے علماء بھی آج کے دور میں بھی ہے نا، یہ کنفرنٹیشن تو نہیں کر رہا نا، چاہے یعنی اب تو کوئی اسلامی حکومت ہے بھی نہیں. اس وقت تو پھر ظلم جبر اگر ہو بھی رہا ہوتا تھا تو پھر بھی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ نافذ کیے جا رہے ہوتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں نافذ کیے جا رہے. اب جو ہے وہ فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے نان کنفرنٹیشنل کے طریقے سے جو ہے وہ حکومتوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تو فساد اوائڈ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کو بھی پتا ہے کہ عوام الناس نے جو ہے نا وہ چاہتے ہی اصل میں یہی چیز ہے، وہ چاہتے ہی یہی والا نظام چاہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ موسیقی کی بھی اجازت ہونی چاہیے، ناچ گانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، ٹی وی کے ڈرامے بھی بند نہیں ہونے چاہیے، فلم انڈسٹری بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ چلتی چلتے رہنی چاہیے. عوام الناس تو یہی چاہتے ہیں، رائٹ؟ اور جو ہے وہ کمرشل سپورٹس بھی ہونے چاہیے، اور کرکٹ میں جو ہے وہ اپنی زندگی برباد کرنا یہ بھی عوام الناس کی سب سے بڑی چاہت ہے. ہمارے ملک کے اندر کرکٹ جو ہے وہ چلتا رہے، ہے نا، کرکٹ کو کوئی آش نہیں آنی چاہیے. تو اس قسم کے عوام کے بلبوتے پہ اگر آپ نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی سٹینڈ لیا تو یہ تو آپ کو کھڑے سے ہی لگائیں گے. وہی حضرت کیا حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ والی بات نا، کہ جب جلسہ ہوتا ہے نا تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا زبردست جو ہے وہ انداز بیان تھا، تو سب واہ 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 شاہ جی، واہ واہ شاہ جی، واہ واہ شاہ جی. اور جب حکومت والے جو ہے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیں تو اس کے بعد باہر بیٹھ کر کے آہ شاہ جی، آہ شاہ جی، ہے نا، پھر اس کے بعد بس آہیں بھرتے ہیں اور بس اس کے بعد کچھ نہیں کرتے. تو ایسے عوام کے تو پھر ان کے ساتھ تو پھر وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں نا اس قسم کی حکومتوں کو. بہرحال تو حرکات تک جو ہے وہ آج ہم نے پڑھ دیا، باقی احزاب یا منزلیں وغیرہ جو ہے انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.